ठीक है, चलो कमरे में। महेश जी और दीपा जी दोनों बच्चों को लेकर कमरे में गए थे। सामान की पैकिंग करने के बाद आदित्य को ख्याल आया, ये दोनों शैतान कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। मॉम बुलाकर ले गई उन्हें। पापा स्टोरी सुना रहे हैं। पापा की स्टोरियाँ बहुत खुश होकर सुनती हैं। पापा का भी उनके बिना मन नहीं लगता। काफ़ी टाइम हो गया उन दोनों को, अब सो जाते हैं। उन दोनों को ले आओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ, आदित्य ने कहा। वे दोनों साथ ही चले गए उन दोनों को लेने के लिए। अदा और अदिति दोनों आदित्य को कितनी प्यारी थीं, ये बात माना को भी पता था। अब आदित्य उन दोनों को एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि हर पल उसकी दोनों बेटियां उसके साथ रहें। वो उन्हें लाड प्यार करना चाहता था, जिसकी तमन्ना कोई भी बेटी अपने पापा से कर सकती है। आदित्य ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ, खुलाए दरवाज़ा, दीपा जी ने कहा। दरवाज़ा खोलकर वे दोनों अंदर गए। सामने दोनों बच्चे सो चुके थे। महेश जी उनके बीच में लेटे हुए थे। दोनों ही उनके एक एक साइड पर सोई हुई थीं। अरे ये तो सो गईं। ऐसा ही होता है हमेशा जब तुम्हारे पापा स्टोरी सुनाते हैं, ये दोनों सो जाती हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें उठाकर ले जाता हूँ, आदित्य बोला। सो जाने दो इन्हें हमारे साथ, हमारे पास भी ये कभी कभी आती हैं, वरना जी माना के साथ अकेली ही रहती हैं। कोई बात नहीं आदित्य, रहने दो ऐसे हमारे पास, हमें भी अच्छा लगता इन दोनों के साथ, दीपा जी ने कहा। आदित्य ने माना की तरफ देखा। माना मुस्कुरा दी। रहने दो इन्हें यहीं पर, ठीक है, आदित्य ने कहा। थोड़ी देर बैठकर माना और आदित्य ने महेश जी और दीपा जी के साथ बातें की। आदित्य, मैं आपसे एक बात पूछूं, महेश जी ने कहा। आप बातें बाद में करना, सुबह हम सभी को जाना है, अभी बच्चों को आप लोग जाकर सो जाओ, दीपा जी ने कहा। उन्होंने आंखों के इशारे से महेश जी को चुप रहने के लिए कह दिया था। उनका ये इशारा आदित्य ने देख लिया था, मगर इस समय उसने पूछना ठीक नहीं समझा। आदित्य जान गया था कि कोई बात है जो महेश जी पूछना चाहते हैं, मगर दीपा जी नहीं चाहती कि महेश जी वो बात करें। आदित्य और माना दोनों कमरे में आ गए थे। तो बोलो मैडम, क्या हुक्म है मेरे लिए? आपके दोनों बच्चे तो सो गए, अब कोई रोकर हमें बुलाएगा तो नहीं? अब जैसे आप चाहें, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। कमरे में आते ही आदित्य ने माना से शरारत से कहा। माना ने आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल दीं। अच्छा, मेरा हुक्म जानना चाहते हो? माना ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा। सबसे पहले मेरा हुक्म ये है कि कमरे का लॉक किया जाए। जो हुक्म, कहते हुए आदित्य ने कमरा लॉक कर दिया था। वो फिर माना के पास आ गया। वो बेड पर बैठ चुकी थी। आदित्य उसके पास बैठते हुए बोला, बोलो अब आगे क्या हुक्म है गुलाम के लिए? वो क्या है कि मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, गुलाम को हुक्म है वो बहुत अच्छे से मेरे पैर दबाए। ठीक है मैडम, पहले आप लेट जाओ। सबसे पहले मुझे वो जगह बताएं जहां जहां दर्द हो रहा है। आपने जो कपड़े पहने हैं मुझसे इससे पता नहीं चलेगा, इसलिए आप इसे उतार दो ताकि मैं अच्छे से चेक करके बता सकूं कि कहां पर दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे गुलाम की नीयत खराब हो रही है, उसका इरादा और बन रहा है। देखिए मैडम, गुलाम का इरादा तो वही होगा जो आपका हुक्म होगा। अब आपका बदन दर्द तो मुझे दूर करना पड़ेगा, तो बताइए सबसे पहले कहाँ दर्द है? सबसे पहले इन होंठों पर हो रहा है। आदित्य ने अपने दोनों हाथों से माना का चेहरा पकड़ लिया। अपने होंठों के बीच उसने माना के होंठ ले लिए। वो धीरे धीरे उन्हें किस कर रहा था। जब माना को सांस लेने में मुश्किल होने लगी तो आदित्य ने छोड़ा। बोलो मैडम, अब दर्द है या हट गया? इतनी जोर से ऐसे कौन करता है? माना आदित्य पर गुस्सा हो गई। तो तुम बता दो, गुलाम को बता दीजिए कि कैसे किस किया जाता है। ठीक है, बताती हूँ मैं। पहले दोनों बेड पर ठीक होकर बैठ गए थे। आदित्य ने बेड के साथ टेक लगा ली थी और माना उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सोच रही हूँ कि आपके होठों का दर्द कैसे दूर करूँ। जैसे मन चाहे, गुलाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना आदित्य के होठों पर झुक गई थी। माना ने हल्का हल्का सा आदित्य को किस किया। ऐसे दर्द दूर किया जाता है, आप जैसे थोड़ी। ठीक है, माना ने आदित्य के सीने पर सिर रख दिया। आदित्य ने माना को अपनी बाहों में कस कर लिया। बताए माना, मैं बहुत खुश हूँ, सचमुच अब जिंदगी जीना चाहता हूँ। ऐसा लगता है किसी ने मेरे सारे दुख दर्द एक मिनट में ले लिए। तुम तीनों को तो मैं हर समय पास देखना चाहता हूँ, एक मिनट के लिए भी तुम दोनों को साइड नहीं करना चाहता। मेरा तो मन था कि मैं दोनों बच्चों को सोते हुए उठा कर ले आऊँ, मॉम और डैड क्या कहेंगे, इसलिए मैंने नहीं उठाया। मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यही कि आप उन दोनों को कितना बिगाड़ने वाले हैं आदित्य, थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर, ऐसे तो वे दोनों बिगड़ जाएंगी। मेरी बेटियाँ बिगड़ती हैं तो बिगड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माना हंसी। धीरे धीरे आदित्य का हाथ माना की टी शर्ट में हरकत कर रहा था। वे दोनों ही मदहोश हो रहे थे, फिर दोनों एक दूसरे में खो गए थे। आज तो खूब फायदा उठाया आपने अदा और अदिति के ना होने का, देखो रात के दो बज चुके हैं, अब सो जाओ, माना उठकर अपने कपड़े पहनने लगी। ठीक है सो जाते हैं, मगर ऐसे ही आ जाओ, कपड़े सुबह पहन लेना। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया था। वो वापस उसके साथ ब्लैंकेट में आकर लेट गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ लगकर सो गए थे। महेश जी आदित्य से क्या कहना चाहते थे? दीपा जी ने आंखों के इशारे से महेश जी को क्यों रोका? क्या आदित्य सचमुच समझ गया था कि महेश जी क्या कहना चाहते हैं? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या आदित्य सचमुच बिगाड़ देगा?